ناظرین السلام علیکم، میں علی عباس سوزی، پروگرام انداز جہاں لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. امید ہے کہ آپ جہاں بھی ہوں گے انشاءاللہ ہمیشہ کی طرح آج بھی بخیر و عافیت ہوں گے. ہمارے آج کے پروگرام کا موضوع ہے ہندوستان میں پیش کیا جانے والا عام بجٹ. اس موضوع پر گفتگو ہوگی معزز مہمانوں سے مگر مختصر سے وقفے کے بعد. یہ ناظرین، جمہوری ملکوں میں اور جہاں جمہوری حکومت برسر اقتدار ہوتی ہے وہاں بجٹ ایک ایسا مسئلہ ہوتا ہے کہ حکومت یا حکمران جماعت جب حکومت میں ہوتی ہے تو اپنے پیش کردہ بجٹ کو متوازن، اچھا اور فلاح و بہبود کا حامل بجٹ قرار دیتی ہے، لیکن وہی حکمران جماعت جب اپوزیشن میں آ جاتی ہے تو وہ اپوزیشن جو اب اس وقت حکمران بن چکی ہوتی ہے اس کے بجٹ کو ناقص اور غریبوں کا دشمن قرار دیتی ہے. چنانچہ یہ ہر جمہوری ملک کی روایت رہی ہے. ہندوستان جو جمہوریت کے اعتبار سے ایک بڑا ملک سمجھا جاتا ہے، وہاں پچھلے دنوں جب بجٹ پیش کیا گیا تو حکمراں کانگریس اور اس کی اتحادی جماعتوں نے اس کا خیر مقدم کیا اور اسے ایک بہتر متوازن بجٹ قرار دیا، لیکن اپوزیشن جماعتوں نے اس پر شدید برہمی اور احتجاج کا اظہار کیا اور کہا کہ یہ بجٹ مایوس کن رہا ہے اور غریبوں کے لیے تو بالکل کام کا بجٹ نہیں ہے. بہرحال اس سے پہلے ہی ریلوے کا بجٹ بھی پیش کیا گیا اور جو ریلوے کا بجٹ پیش کرنے کے بعد سیاسی سطح پر ایک چپکلش پیدا ہوئی وہ بھی آپ کے سامنے ہے. بہرحال ہم اس موضوع پر گفتگو کریں گے معزز مہمانوں سے. چلتے ہیں دہلی اسٹوڈیو جہاں پر موجود ہیں اس وقت ہندوستانی کمیونسٹ پارٹی کے قومی سیکرٹری جناب شمیم فیضی صاحب. شمیم فیضی صاحب، السلام علیکم. شمیم فیضی صاحب، بجٹ پیش کر دیا گیا، ظاہر ہے اس پر بحث ہوگی اور کچھ ترمیم ہوں گی، کچھ تبدیلی ہوگی، کچھ اصلاح ہوگی، لیکن بہرحال حکومت کی طرف سے بجٹ پیش کر دیا گیا، کیا کہنا چاہیں گے آپ؟
دیکھیے، ہم تو بجٹ کو اس کی بنیادی فلسفی کی بنیاد پر دیکھتے ہیں. وزیر مالیات نے بجٹ پیش کرتے ہوئے دو باتیں کہیں. پہلی بات انہوں نے یہ کہی کہ ملک کے اندر غریبوں کو جو سبسڈی دی جا رہی ہے وہ ہماری قومی معیشت پر بوجھ ہے، اس لیے اسے گھٹا کر جملہ گھریلو پیداوار کے 2% تک کر دینا چاہیے. اس کے ساتھ ہی انہوں نے مختلف کارپوریٹ گھرانوں، حد تو یہ ہے کہ غیر ملکی کمپنیوں کے لیے بھی بہت سی رعایت کا اعلان کیا، اور اسے انہوں نے کہا کہ یہ ترغیبات ہیں معاشی ترقی کے لیے، انسینٹیوز ہیں فار ڈیولپمنٹ. تو یہ بنیادی فلسفہ ہے جس پر وہ بجٹ پیش کیا گیا ہے. اسے ایک مثال سے اسی بجٹ کی سمجھا جا سکتا ہے. غریبوں کے بارے میں بعد میں آؤں گا.
جی،
متوسط طبقے کے تعلق سے حکومت بہت کچھ دعویٰ کرتی ہے کہ وہ ان کے مفادات کا خیال رکھتی ہے. راس ٹیکس میں، یعنی انکم ٹیکس میں، حکومت نے اس کی حد بڑھا کر 1,80,000 کے بجائے 2,00,000 روپے کر دی ہے، یعنی 20,000 روپے پر مزید انکم ٹیکس نہیں لگے گا. اور حکومت کے اپنے اعداد و شمار کے مطابق جو جملہ خسارہ ہوگا حکومت کو وہ 4,500 کروڑ روپے کا ہے. اس کے ساتھ ہی حکومت نے جو ایکسائز اور سروس ٹیکس ہے اس کو 10% سے بڑھا کر 12% کر دیا. اور پہلے سروس ٹیکس چند خدمات پر لگتا تھا، اب حکومت نے اعلان کیا ہے کہ ہم ایک منفی فہرست جاری کریں گے جس میں شامل خدمات کو چھوڑ کر باقی تمام خدمات پر سروس ٹیکس لاگو ہوگا. اور حکومت کا اندازہ ہے کہ اکیلے سروس ٹیکس سے جو عام لوگ پے کریں گے، جو عام لوگ ادا کریں گے، اس سے حکومت 45,000 کروڑ روپے کی آمدنی کرے گی. اس کا مطلب یہ ہوا کہ متوسط طبقات کو 4,500 کروڑ روپے کی رعایت دے کر
جی
عام لوگوں پر 45,000 کروڑ روپے کا نیا بوجھ لاد دیا گیا ہے. یہی इससे पहले के रेलवे बजट में किया गया। हालांकि वो बेचारे अब वजीर रेलवे नहीं रहे, लेकिन शेर व शायरी करते हुए उन्होंने बहलाने की कोशिश की कि हम तो चंद पैसों में रेल का किराया बढ़ा रहे हैं, 2 पैसा स्लीपर क्लास के लिए, 5 पैसा एसी के लिए और 10 पैसा सेकंड एसी के लिए और 20 पैसा या 30 पैसा फर्स्ट एसी के लिए। लेकिन जब हम इसको हकीकत में तब्दील करते हैं तो पता चलता है कि स्लीपर क्लास पर अगर कोई मुसाफिर हमारी सबसे ज़्यादा दूरी की ट्रेन जो डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी जाती है उस पर सफ़र करे तो अब उसे स्लीपर क्लास में 33% ज़्यादा किराया देना होगा, 33%, जबकि एसी क्लासेस के लोगों के लिए ये इजाफा 26, 24 और 22% होगा। तो किसके लिए ये रेलवे बजट, किसके लिए ये मरकजी बजट है? और सिर्फ इतना ही नहीं, रेलवे बजट में सिर्फ किराया बढ़ाया गया लेकिन उससे ठीक 10 दिन पहले 6 मार्च को रेलवे मिनिस्ट्री ने तमाम रेलवे भाड़े में 12% इजाफे के का ऐलान किया, जिसमें गजाई अजनास, कीमियाई खाद, ईंधन सब चीज़ों का भाड़ा बढ़ा दिया गया। जाहिर है इसका चौतरफा असर आम चीज़ों की कीमतों पर पड़ेगा। तो चाहे वो रेलवे बजट हो चाहे वो मरकजी बजट हो, पूरा का पूरा सिर्फ कारपोरेट घरानों के लिए है, आम लोगों के लिए तो इससे नया बोझ ही लादा गया है।
जी शमीम फैजी साहब बहुत शुक्रिया, मैं फिर हाजिर हूँगा आपकी खिदमत में। दिल्ली से ही टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं हिंदुस्तान के सीनियर साफी तस्दीनगार जनाब जफर आगा साहब। अस्सलाम वालेकुम जनाब।
जी वालेकुम।
जफर आगा साहब, बात हो रही है बजट की जो प्रणब मुखर्जी साहब ने पेश किया है हिंदुस्तान के वजीर खजाना ने, हुकूमत कांग्रेस या हुकूमत के साथ जो शामिल जमातें हैं उन्होंने जाहिर इसका खैर मकदम किया है, और साथ ही जो खबरें आ रही हैं उनमें ये कहा गया कि प्रणब मुखर्जी साहब ने बजट पेश करने के बाद कहा कि बजट पेश करते वक्त कुछ सियासी मजबूरियों को भी ध्यान में रखा गया है, तो जो कांग्रेस ने या हुकूमत ने इसका खैर मकदम किया है उसकी बुनियाद क्या है, और अगर सियासी मुखालिफीन और अपोजिशन जमातें उस पर तनकीद कर रही हैं तो उसकी बुनियाद क्या है?
देखिए, पहली बात तो ये है कि हुक्मरान जमातें जो भी होती हैं उनके उनकी जानिब से हुकूमत का जो फैसला होता है उसका खैर मकदम होता है, ये बड़ी फितरी बात है और होना भी चाहिए। वो वही कर रही हैं जो उनको करना चाहिए, जो एक रूटीन है सारी दुनिया में। मुखालिफीन जो मुखालफत कर रहे हैं हिज्ब मुखालिफ वाले, वो भी आप जानते हैं कि वो बजट में हुकूमत अगर ये भी ऐलान करती कि हम तुम्हें आवाम को सोना चांदी मुफ्त बांटेंगे तो भी वो उसकी मुखालफत करते, ये सियासत का दस्तूर है, आप वो भी वाकिफ हैं। इससे बरतरफ बात ये है कि मैंने अभी थोड़ा सा जिक्र सुना शमीम फैजी साहब का, जैसा वो फरमा रहे थे कि बहुत ही इससे बोझ बढ़ने वाला है, टैक्सेस जो बढ़े हैं, सब्सिडीज जो कम हुई हैं, रेलवे का जो बजट आया है, और ऐसा नहीं है कि सियासी पार्टियां, पूरा यूपीए इससे खुश है। आप वाकिफ हैं कि ममता बनर्जी ने इस हद तक गई कि उन्होंने अपने वजीर को बरतरफ करवा दिया रेल का किराया बढ़वाने पे, बेचैनी है अपोजिशन में भी और हुक्मरान जमातों के दरमियान भी बेचैनी है। लेकिन प्रणब मुखर्जी की एक बात जो वो जो उसकी वजह बताई उन्होंने खास बजट देने की, वो बात मेरा अंदाजा यह है और मेरी राय यह है कि वो बात उनकी बिल्कुल मुनासिब है कि इकॉनमी की हालत खराब है, ग्रोथ रेट कम हो चुका है, खासा कम घटा है, तकरीबन 2% घट चुका है पिछले 2 वर्षों में, और उसका एक बहुत बड़ा सबब यह है कि आलमी माशी बहरान जो है उसका असर सारी दुनिया पे हुआ और हिंदुस्तान पे भी बहुत जबरदस्त हुआ। इंटरनल प्रॉब्लम्स हैं, सख्त मेजर्स लेने की जरूरत थी, लेकिन उसके ये माने नहीं है कि सारा बोझ عوام پر ڈال دیا جائے، کارپوریٹ گھرانوں کو کے اوپر کوئی بوجھ نہ ہونے پائے، ان کو آپ ریلیف پیکج دیں اور عوام کے اوپر بوجھ ڈالیں. اس میں کوئی شک نہیں کہ جو موجودہ معاشی حالات ہیں ہندوستان کے اور دنیا کے، آج کے دور میں ہندوستان دنیا کے معاشی سسٹم سے باہر نہ ہے اور نہ ہو سکتا ہے، خاص طور سے جو پیرامیٹرز میں اب فائننس منسٹر کو کام کرنا پڑ رہا ہے، ان پیرامیٹرز میں ان کو عالمی معاشیات کے بارے میں بھی سوچنا ہوگا اور اس کے کیا اثرات ہو سکتے ہیں.
جی.
ان لمیٹیشنز میں پرنب مکھرجی نے اپنا بجٹ پیش کیا ہے. اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ کوئی بھی فائننس منسٹر ہوتا، جو ہندوستان کا موجودہ نظام ہے اس نظام میں وہ کوئی بڑا اچھا بجٹ نہیں دے سکتا تھا، ایسا بجٹ نہیں دے سکتا تھا کہ جس سے ہر کوئی خوش ہو. لیکن اس میں یہ سیاسی پہلو بھی ہے، اور سیاسی پہلو یہ ہے کہ یو پی اے حکومت کے کا جو اب یہ دور چل رہا ہے اس میں یہ حکومت دو بجٹ بس اور پیش کر سکتی ہے، ایک یہ اور ایک اس کے بعد والا جو بجٹ آئے گا. پھر الیکشن ہونی 2014 کے پارلیمنٹ کے، تو میرا اندازہ یہ ہے کہ پرنب مکھرجی نے یہ بہت سوچ کے اور یو پی اے حکومت میں کی قیادت میں سوچ کے یہ فیصلہ لیا کہ اس بجٹ میں جتنے بھی ہارش میجرز لیے جا سکتے ہیں، سخت اقدامات اٹھائے کیے جا سکتے ہیں اکانومی کو درست کرنے کے لیے، وہ جو حالیہ بجٹ پیش ہوا ہے 2012 اور 2013 کا بجٹ، اس میں وہ ہارش میجرز لے لیے جائیں، اکانومی کو بہتر کر لیا جائے.
جی.
اور پھر اس کے بعد ایک ایسا پاپولر بجٹ، اگلا بجٹ 2013 اور 2014 کا پیش کیا جائے کہ جس سے عوام کو راحت دے کر الیکشن جیتنے کی کوشش کی جائے. یہ ایک سیاسی پہلو ہے جو موجودہ حالات کے تحت مجھے لگتا ہے کہ جس نے پرنب مکھرجی کو اور اس حکومت کو کافی حد تک گورن کیا ہے اس بجٹ کے سلسلے میں. بجٹ کی ایک سیاست بھی ہوتی ہے، اس سیاست سے انکار نہیں کیا جا سکتا، جو موجودہ حالات ہیں معاشیات کے اس میں سخت میجرز لینے تھے، اس کے بجائے کہ وہ اگلے سال لے اور پھر سیاسی خمیازہ بھگتے، یو پی اے نے یہ طے کیا ہے کہ اسی سال سخت میجرز لے کر پھر اگلے سال ایک بہتر بجٹ پیش کیا جائے.
جی.
مجھ کو میرا یہ ہے کہ اب اس میں کتنے کامیاب ہوتے ہیں، یہ پلاننگ تو یہ ساری چیزیں پلاننگ لیول کے اوپر بہت ٹھیک
جی.
لگتی ہیں، لیکن یہ جب ان پہ عمل کیا جاتا ہے تو اس میں نئی نئی پریشانیاں نئی نئی دقتیں آتی ہیں، تو اس فکر میں یو پی اے کتنا کامیاب ہوتا ہے یہ آنے والا وقت بتائے گا. لیکن فکر جو ہے بجٹ کی وہ مجھے یہی لگتی ہے کہ موجودہ معاشی بحران کے تحت یہ مجبوری ہے کہ سخت اقدامات لیے جائیں، اور اگلا بجٹ اس کی سیاست یہ ہے کہ تاکہ اگلے بجٹ میں جو الیکشن کے
جی.
سال کا بجٹ ہوگا اس میں عوام کو راحت دے کر عوام کو خوش کرنے کی کوشش
کی جائے. بہت شکریہ. میں پھر حاضر ہوں گا آپ کی خدمت میں. اس وقت ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں حکمراں کانگریس پارٹی کے رہنما جناب وسیم احمد صاحب. وسیم احمد صاحب السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
وسیم احمد صاحب، ابھی گفتگو ہو رہی تھی کمیونسٹ پارٹی آف انڈیا کے قومی سیکرٹری جناب شمیم فیضی صاحب سے اور سینئر صحافی ظفر آغا صاحب سے. شمیم فیضی صاحب نے واضح لفظوں میں کہا کہ عام لوگوں پر اور متوسط طبقوں پر اس بجٹ سے دباؤ بڑھے گا، اور ظفر آغا صاحب نے کہا کہ حکومت معاشی مجبوریوں کی وجہ سے مجبور ہوئی کہ کچھ سخت اقدام لے، اور اس میں ایک سیاسی پہلو یہ ہے کہ یہ والا بجٹ کسی حد تک اس میں میجر فیصلے لیے جائیں تاکہ آئندہ جو بجٹ آئے گا ایک سال کے بعد وہ الیکشن سے پہلے کا ہوگا، اس میں عوام کو کسی حد تک راحت دی جائے، تو یہ سیاسی پہلو بھی اس میں کار فرما ہے. تو شمیم فیضی صاحب اور ظفر آغا صاحب کی گفتگو کے تناظر میں آپ حکمراں جماعت کے ایک رہنما کی حیثیت سے کیا کہنا چاہیں گے؟
میرا ماننا یہ ہے کہ شمیم فیضی صاحب کے جو بات ہے وہ اپنی جگہ ٹھیک ہے کہ اور یہ ظفر آغا صاحب دونوں ایکسپرٹ ہیں اکنامک افیئرس کے، تو میرا ماننا یہ ہے کہ یہ جو بجٹ ہے یہ ایک ایسا بجٹ ہے جو عام آدمی کو لانگ ٹرم میں فائدہ پہنچائے گا، اور یہ کہنا بہت زیادہ صحیح نہیں ہے کہ غریبوں پر اس کا بہت زیادہ اثر پڑے گا. دیکھیے یہ بھی دیکھنا پڑے گا کہ جو حالات ملک کے اس وقت اکنامک کنڈیشن ہے، جو معاشی حالت ہے، उसको मद्देनजर रखते हुए ये तो नहीं हो सकता है कि हर बजट इतना आसान रखा जाए और उसके जो दिक्कतें हैं जो परेशानियां हैं वो अपनी जगह हैं, लेकिन क्या किया जाए, ऐसे इकदाम उठाए जा रहे हैं। खुद फाइनेंस मिनिस्टर की तरफ से ये कोशिश रही, प्राइम मिनिस्टर साहब की तरफ से ये कोशिश रही, सोनिया जी की तरफ से ये कोशिश रही कि ये बजट एक ऐसा बजट आए जो गरीबों को राहत पहुंचाए, गरीबों के लिए एक मुफीद मंद साबित हो सके और गरीब इससे बहुत ज्यादा असरअंदाज ना हो पाए, ये इस किस्म का बजट है।
जी बहुत शुक्रिया, मैं फिर हाजिर हूँ। शमीम फैजी साहब, कहा जा रहा है कि जो बजट पेश किया गया है इससे शरेनमू जो है 7.6% हो सकती है, तो किस बुनियाद पर हो सकती है?
देखिए, असल में हुकूमत ना तो बोहरान की असलियत से असलियत को जानते हुए उसे निमटना चाहती है और ना ही वो इस बात के लिए तैयार है कि ऐसे इकदाम किए जाएं जिनसे आवाम को राहत पहुंचे। जहां तक माशी गिरावट का ताल्लुक है, यकीनन इसमें एक हिस्सा आलमी बोहरान का भी है, लेकिन हम ये क्यों भूल जाते हैं कि माशी शरे नमू में लगातार गिरावट आ रही है। ज़रात हमारे यहाँ सबसे बड़ा शोबा है, इसमें गिरावट होते होते हम मनफी के करीब पहुंच चुके हैं। हमारे यहाँ कहा यह जा रहा था कि सनअती शोबे में तो गिरावट होती है लेकिन खिदमात के शोबे में हम तरक्की कर रहे हैं, और अभी भी जो वज़ीर ख़ज़ाना ने अंदाज़ा लगाया है कि 7% से ज़्यादा होगी, हालांकि मुझे पता है कि जब वो रिवाइज इस्टीमेट पेश करेंगे तो ये 6% से भी कम हो जाएगी। वो कहते थे कि खिदमात के शोबे में हम काफ़ी तरक्की कर रहे हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि पिछले 8 महीनों में लगातार खिदमात के शोबे की शरह नमू में भी गिरावट आई है। जब तमाम शोबे ही गिरावट की तरफ जा रहे हैं तो कौमी जुमला घरेलू पैदावार की शरह नमू कैसे बढ़ सकती है, ये मेरे समझ से बाहर है। दूसरी बात ये जो कही जा रही है कि हुकूमत सियासी हालात की वजह से कुछ हार्श सख्त कदम उठाने पर मजबूर है, सख्त कदम क्या उठाया हुकूमत ने? अगर हुकूमत को अपनी आमदनी बढ़ानी है तो दो किस्म होते हैं, डायरेक्ट टैक्सेस, इनडायरेक्ट टैक्सेस। डायरेक्ट टैक्सेस में उसने सिर्फ 20,000 रुपये की राहत दी, लेकिन अभी भी वो आमदनी के बढ़ने के साथ साथ शरे इनकम टैक्स को बढ़ाने के लिए तैयार नहीं है। मसलन अभी जिनकी आमदनी 2 लाख रुपए से ऊपर है और 5 लाख रुपए तक है वो 10% इनकम टैक्स देंगे, जिनकी आमदनी 5 लाख रुपए से 10 लाख रुपए तक है वो 10% इनकम टैक्स देंगे, और उससे ऊपर चाहे आपकी आमदनी 1 अरब रुपया हो, क्योंकि अब तो हमारे मुल्क में कम से कम 68 अरबपति भी हैं, वो भी सिर्फ 30% उसी तरह से देंगे जिस तरह से 10 लाख की आमदनी वाला देगा। अगर हुकूमत वाकई आमदनी अपनी आमदनी बढ़ाना चाहती थी तो ये जो ऊपर की शरह है इसको आमदनी के साथ साथ बढ़ाते जाना चाहिए था। मसलन अगर आप 1 करोड़ कमाते हैं तो आप 40% दीजिए, आप अरब कमाते हैं तो 50% दीजिए, लेकिन वो नहीं करेगी, इसलिए कि इस हुकूमत का मकसद अवाम नहीं बल्कि कारपोरेट घराने हैं।
जी बहुत शुक्रिया। जफर आगा साहब, आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? हुकूमत ने कहा है कि इस बजट का मकसद तेज रफ्तार इक्तिसादी और माशी तरक्की को बरकरार रखना है और शरे नमू को आगे बढ़ाना है, तो आप इस सिलसिले में क्या कहना चाहेंगे?
देखिए, हर हुकूमत बजट के मौके के ऊपर, खासतौर से फाइनेंस मिनिस्टर, प्लीज ऑल जिसको अंग्रेजी में कहा जाता है प्लीज ऑल स्टेटमेंट्स, हर को खुश करने वाले बयान देता है, लेकिन जो सूरत हाल है इंटरनेशनल इकोनॉमी की, कौमी माशियात की, हिंदुस्तान की, उनमें ग्रोथ रेट कोई बहुत तेजी से नहीं बढ़ सकता। ये वजीर खजाना बखूबी इसको उनको अंदाजा है इस बात का,
और जाहिर सी बात है कि जब ग्रोथ रेट नहीं बढ़ेगा तो तरक्की के ऊपर भी असर पड़ेगा। इसके बात यह है कि जो इंटरनेशनल मार्केट इकोनॉमी कोलैप्स कर रही है दुनिया में, और हिंदुस्तान ने भी उसी तरफ कदम बढ़ाया था और उससे जुड़ गई, अब हिंदुस्तान उस मार्केट इकोनॉमी की चपेट की क्राइसिस की चपेट से बाहर नहीं आ सकता है। तो कोशिश यही हो रही है हिंदुस्तान में, अब वो खुद तो खुदा का लाख लाख शुक्र है कि इस मुल्क में पंडित जवाहरलाल नेहरू का जो मिक्स इकोनॉमी का वो था, वो पूरी तरह से कोशिश के बावजूद पूरी तरह से लोग उसको डिसमेंटल नहीं कर सके, उसको खत्म नहीं कर सके थे। इस वजह से हिंदुस्तान में इतना जबरदस्त बहरान नहीं आया जैसा कि यूरोप और अमेरिका में आया। लेकिन जिस हद तक आपने इकोनॉमी को अपनी खोल दिया है उस पैराए में ये नामुमकिन है कि आलमी माशी बहरान जो है उसका असर हिंदुस्तान की इकोनॉमी, हिंदुस्तान के बजट और हिंदुस्तान के उसका खुमियाजा हिंदुस्तान के आम आदमी को न भुगतना पड़े। चुनांचे इन हालात में दुनिया में इकोनॉमी में जरा सा अमेरिका में जरा सी कदरे राहत हुई है, यूरोप की हालत बहुत खराब है। जाहिर सी बात है कि इन हालात में इन्वेस्टमेंट्स में कमी होगी, और जब इन्वेस्टमेंट्स में कमी होगी तो ग्रोथ रेट चाहे वो सर्विस सेक्टर का हो चाहे वो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन हो, इन तमाम सेक्टर्स में ग्रोथ रेट को बढ़ाना बहुत मुश्किल होगा। तो ग्रोथ रेट और तरक्की के बढ़ने के तेजी से बढ़ने के इम्कान बहुत बहुत कम नजर आते हैं। वो बयान सियासी ज्यादा है और हकीकत पर मबनी कम है। लेकिन प्रणब मुखर्जी एक वो ऐसे तजुर्बेकार वजीर खजाना हैं जिन्होंने दोनों इकोनॉमी मिक्स्ड इकोनॉमी, जिस जमाने में हिंदुस्तान में पब्लिक सेक्टर की का जो कमांडिंग हाइट्स होती कहा जाता था, उनकी कमांडिंग हाइट होती थी, उस जमाने में भी बजट पेश किए हैं और मार्केट इकोनॉमी को भी देखा है। तो मैं समझता हूँ कि प्रणब मुखर्जी सीजन पॉलिटिशियन और सीजन इकोनॉमी फाइनेंस मिनिस्टर हैं, और हालात को देखते हुए उनके अलावा इन हालात को मेरे ख्याल से संभालने वाला उनसे बेहतर और कोई हिंदुस्तानी निजाम में मुझे नजर नहीं आता। मुझे उम्मीद है कि वो हत्तल इम्कान कोशिश करके कुछ बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं, वो करेंगे, लेकिन हालात बहुत दुनिया के लिए परेशान कुन है और हिंदुस्तान उस माशी परेशानियों का चपेट में रहेगा। इस वजह से ग्रोथ रेट और तरक्की की में बहुत तेजी से तरक्की मुल्क का तेजी से तरक्की की तरफ बढ़ना जरा मुश्किल नजर आता है।
जी बहुत शुक्रिया, मैं फिर आ जाऊंगा। वसीम अहमद साहब, अभी हमारे दोनों ये मेहमान जफर आगा साहब और शमीम फैजी साहब ने अपनी बातें की, मैं आपसे पूछना चाहूंगा, कह रहे थे कि जफर आगा साहब भी कह रहे थे कि जाहिर है कि इसमें सियासी पहलू भी है, और प्रणब मुखर्जी साहब बहुत ही मजे हुए वजीर खजाना है। वसीम अहमद साहब
चले जाना,
वसीम अहमद साहब
दिलवानी वापस जाएगा।
हेलो वसीम अहमद साहब, हाँ बताए, ऐसा लगता है कि हमारी आवाज उन तक नहीं पहुंच पा रही है। वसीम अहमद साहब मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक?
जी साहब को सुन पाया हूँ, न मैं जफर आगा साहब को सुन पाया हूँ।
जी वसीम अहमद साहब, मैं ये पूछना चाहूंगा कि ये जफर आगा साहब कह रहे थे कि जो हुकूमत ने दावा किया है कि हम तेज रफ्तार शहर नमू और पायदार शहर नमू को बरकरार रखना चाहते हैं इस बजट के जरिए, वो ऐसा कर नहीं पाएगी, लेकिन बहरहाल मौजूदा सूरत हाल में ये हुकूमत की मजबूरी थी और सनती जो तबका है उस पर ज्यादा टैक्स लगाना चाहिए था, क्या कहना चाहेंगे आप?
देखिए वो तो अपनी जगह है कि टैक्सेस जो है वो जो बड़े कॉरपोरेट हाउसेस हैं उनको ज्यादा होना चाहिए था, लेकिन ये जो बजट है इस बजट में ये कोशिश की गई है हर हालत में कि भाई हम इस बजट लाएं जो समाज का हर वक्त जो है उससे फायदा उठा सके, ये कोशिश की गई है। अभी क्लास को अलग करके या दूसरी को फायदा पहुंचा के या किसी को नुकसान पहुंचा के ऐसा नहीं।
जी
यस हेलो
जी जी आवाज आ रही है, फरमाइए।
हाँ तो मैं ये अर्ज कर रहा हूँ आपसे कि बजट में ये कोशिश की गई है कि अपर मिडिल क्लास को कोई बहुत ज्यादा इसका फायदा ना पहुंचे, मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास और मुल्क का जो गरीब है उसको उसका भी ख्याल इसमें रखा गया है। और इसलिए आप ये देखिए कि जो टैक्सेस लगाए गए हैं और खासतौर से जो इनकम टैक्स में भी छूट दी गई है, वो भी जो लोअर इनकम ग्रुप है उसको 2 लाख तक की छूट देना, किसानों के मसाइल पर पूरे गौर करना वगैरह। हेलो
जी 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 फरमाइए, आवाज आ रही है आपकी वसीम साहब।
हाँ जी हाँ, तो मैं ये कह रहा हूँ कि किसानों के मसाइल पर खासतौर से, क्योंकि ऐसा सबसे बड़ा जो सफरर है हिंदुस्तान के अंदर वो किसान
जी जी, बता ऐसा लगता है कि कुछ मुश्किल है टेलीफोन लाइन पे।
हाँ आवाज नहीं आ पा रही सही जी।
जी जी हमारे साथ ही कोशिश करेंगे वैसे मेहमद साहब की दोबारा आपसे रब्ता करें, माफ कीजिएगा आप इंशाल्लाह रहिएगा तो फिर हम आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। शमीम फैजी साहब, आप देखें कि आम बजट पेश करने से पहले रेलवे का बजट पेश किया गया और जो एक तरह का सियासी माहौल पैदा हुआ वो आपके पेश नजर है, तो क्या अब जब वजीर जो साबिक वजीर थे रेलवे के उन्होंने इस्तीफा दे दिया है और अब नए वजीर मुकुल राय साहब ने हलफ उठा लिया है, तो क्या ये भी इम्कान है कि ये सरेनो नया बजट पेश करें या उसी जो साबिका बजट है उसी का दफा करेंगे?
नहीं, जो साबिका बजट है उसमें दिखावे के लिए कुछ तरमीमात होंगी, मिसाल के तौर पर शायद सेकंड क्लास और स्लीपर क्लास के में जो इजाफा किया गया है उसे वापस ले लिया जाएगा, लेकिन इसे हम एक मजमूई तौर पर ड्रामाबाजी मानते हैं, इसका कोई हकीकत से ताल्लुक नहीं है। ममता बनर्जी अटल बिहारी वाजपेयी की हुकूमत में भी वजीर रेलवे थी और अभी पिछले साल तक वजीर आला बनने से पहले तक भी वजीर रेलवे थी, वो बखूबी जानती हैं। और दिनेश त्रिवेदी ने बिल्कुल सही कहा कि पहले के रेलवे वजीरों ने पूरे रेलवे के निज़ाम को
जी
ICU में पहुंचा दिया है।
जी
वजीर रेलवे ने कहा कि हम हिफाजती इंतज़ाम पर खसूसी तवज्जो देंगे, लेकिन अगर आप उनकी तकरीर को पढ़ें तो उन्होंने सिर्फ ये किया है कि धीरे धीरे कैसे पूरे रेलवे के निज़ाम को निजी सरमायादारों के हाथ में दे दिया जाए, और अब तो किराया बढ़ाने के लिए भी रेलवे बजट का इंतजार नहीं किया जाएगा, बल्कि उन्होंने ऐलान कर दिया है, उन्होंने क्या हुकूमत ने, मनमोहन सिंह की हुकूमत ने ऐलान कर दिया है कि अब एक कमेटी बना दी जाएगी, ये कमेटी वक्तन फोक्तन उसी तरह से रेल का किराया साल में कई मरतबा बढ़ा सकती है जिस तरह हमारी हुकूमत अब आदतन पेट्रोल और पेट्रोलियम मसनूआत का दाम बढ़ाती है। तो इससे वाजे हो जाता है कि वो क्या चाहते हैं, और सिर्फ रेलवे बजट और मरकजी बजट ही हुकूमत के इरादों को जाहिर नहीं करता, बल्कि बजट मरकजी बजट से एक दिन पहले जो माशी जायजा रिपोर्ट, इकोनॉमिक सर्वे रिपोर्ट पेश की गई है उसमें हुकूमत ने वाजे कर दिया है कि वो रिफॉर्म के नाम पर, इस्लाहात के नाम पर माशी नौ आज़ाद रवि के वो कौन से इकदाम हैं जिन्हें इस साल के दौरान वो पूरा करना चाहती है। मसलन बजट पेश होने के फौरन बाद से ये कहा जाने लगा है, माशी जायजा रिपोर्ट में भी कहा गया है कि खुर्दा बाजार में 51% गैर मुल्की सरमायाकारी के फैसले को जो काबीना ने किया था जिसे टाल दिया गया था
जी
लागू किया जाएगा। अब हम देखेंगे कि मोहतरमा ममता बनर्जी साहिबा जो इस फैसले के भी खिलाफ थी तो क्या अब वो और किसी वजीर की कुर्बानी लेकर अपना ड्रामा जारी रखेंगी?
जी
ये सब कुछ सियासी नहीं है, बल्कि शायद वो तैयारी कर रही हैं कि अब UPA 2 की नैया डूबने वाली है तो किसी और का दामन थाम लें।
जी बहुत शुक्रिया। जफर आगा साहब, आप क्या कहेंगे, जो रेलवे के वजीर एक का इस्तीफा और रेलवे बजट का जो मामला था, अब मुकुल राय साहब ने हलफ बर्दारी यानी हलफ उठा लिया है और हलफ बर्दारी की तकरीब भी मुनाकिद हो चुकी है, तो इसको आप क्या कहेंगे कि वजीर आजम मनमोहन सिंह साहब ने दूसरे वजीर को हलफ दिला दिया ममता बनर्जी के कहने पर और जाहिर है कि बहुत ही खुश सलूबी से मामला हल हो गया, तो इस जैसा कि अखबारात में और जराए ابلاغ جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ شاید یو پی اے مخلوط حکومت کی مجبوری تھی کہ انہوں نے ممتا بنرجی کی بات مان لی, تو کیا یہ صحیح ہے؟
بالکل صحیح ہے, بالکل صحیح ہے. جو ہندوستان کی کا سیاسی پس منظر ہے وہ قومی پارٹیوں کے حق میں ختم نہیں ہے اور علاقائی پارٹیوں کے میں اس پر حاوی ہیں. آپ واقف ہیں کہ ابھی اتر پردیش کے جو اور دوسری صوبوں میں جو چناؤ ہوئے ان میں علاقائی پارٹیوں کو بہت سخت بہت زبردست کامیابی رہی, اور ان کامیابی سے علاقائی پارٹیوں کے جوش و ولولے بہت بڑھ گئے ہیں, اور ان کو یہ نظر آنے لگا ہے کہ 2014 کے بعد جب نئی حکومت بنے گی اس وہ حکومت میں ان کا اثر اور دبدبہ بڑھ سکتا ہے اور اس کے امکان بہت وسیع ہیں. چنانچہ وہ ابھی سے وہ سیاست انہوں نے شروع کر دی ہے کہ جس میں نیشنل پارٹی بالخصوص اقتدار میں جو کہ کانگریس اس وقت سب سے بڑی پارٹی ہے اس کو ہر طرف سے اس پر دباؤ آ رہا ہے علاقائی پارٹیوں کا. ہم جیسا شمیم صاحب فرما رہے تھے کہ ممتا بینرجی اس گھات میں ہے کہ وہ اگلی حکومت جو بنے اس میں ان کا نمایاں رول ہو, اس میں کون حکومت بناتا ہے. ہر آدمی دیکھیے, بات یہ ہو رہی ہے سیاست جو ہے اس تجد کے تناظر سے جو بیانات خاص طور سے آ رہے ہیں, جو ریٹورک ہو رہی ہے بجٹ کی, وہ ریٹورک جو ہے وہ 2014 کے چناؤ کے مد نظر کی ریٹورک ہے, بیان بازیاں جو ہیں اس کا سبب یہ ہے کہ ہر پارٹی کو یہ نظر آ رہا ہے, علاقائی پارٹیوں کو, چاہے وہ جو علاقائی پارٹیاں جو یو پی اے کی حلیف بھی ہیں ان کو بھی یہ لگتا ہے کہ سارا الزام کانگریس کے اوپر تھوپ دو اور خود عوام کے ہمدرد نظر آتے رہو تاکہ 2014 کے چناؤ میں کانگریس کو نقصان ہو اور ان کو نقصان نہ ہو. ممتا بینرجی یہ جو پاپولزم کی سیاست کہلاتی ہے اس کی ایک بہت ہی ماہر پلیئر ہیں, اور پھر بنگال میں ان کا مقابلہ کمیونسٹوں سے ہے. کمیونسٹ حکومتیں آپ جانتے ہیں کہ وہ کمیونسٹ پارٹیز غریب کے نام کی ہی سیاست کرتی ہیں, ان کا مقابلہ کمیونسٹوں سے ہے. چنانچہ ان کے لیے یہ پرو وہ غریبوں کا وہ یہ نہیں چاہتی کہ وہ غریب مخالف کہلائیں, اس لیے وہ کوئی بھی موقع آتا ہے اس پہ وہ اس قسم کا ایک پاپولسٹ اور ریٹوریکل سٹینڈ لیتی ہیں. اس کو شمیم صاحب کہہ رہے تھے کہ ڈرامہ بازی تاکہ وہ بنگال کے عوام ان کو غریبوں کا ہمدرد سمجھتے رہیں, لیکن آج کے عوام بہت ہوشیار ہیں, وہ سیاست سمجھتے ہیں. کتنا ممتا جی کی اس ریٹورک پہ اور پروپر پاپولزم پہ ان کو کامیابی ملے گی یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا. لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ ہندوستان جو حالیہ چناؤ ہوا ہے, صوبائی چناؤ ہوئے ہیں ابھی پانچ صوبوں میں, اس نے ہندوستان کا مرکزی سیاسی منظرنامہ بھی بہت حد تک اثر انداز کیا اور بدلا. اور اس میں سب سے بنیادی فرق جو آیا ہے وہ یہ آیا ہے کہ اب علاقائی پارٹیوں کو یہ نظر آ رہا ہے کہ 2014 میں مرکز پر وہ یا تو قبضہ کر سکتی ہیں یا جو حکومت بنے گی ان علاقوں اس اگلی حکومت مرکزی حکومت میں علاقائی پارٹیوں کا اثر بہت زیادہ ہوگا. اس لیے ہر علاقائی پارٹی یہ چاہ رہی ہے کہ وہ اگلے پارلیمنٹ میں اس کے زیادہ سے زیادہ کامیابی حاصل ہو سکے تاکہ مرکز میں اس کا رعب و دبدبہ بڑھ سکے. سیاست اب اسی نہج پہ پہنچ گئی ہے, اور وہ یہ سیاست بجٹ کے تعلق سے بھی بہت صاف بالکل صاف نظر آ رہی ہے. ممتا
جی زبر میں آپ ہی سے کہنا چاہوں گا ریلوے کے تعلق سے کہ جب ریلوے کا وہی بجٹ ہوگا جو ترویدی صاحب نے پیش کیا تھا اور جس پر ممتا بنرجی صاحب نے ناراضگی کا اظہار کیا اور ان سے استعفیٰ تک لے لیا, اور اس کے بعد اب دوسرے وزیر کو انہوں نے نامزد کیا اور دوسرے وزیر نے حلف بھی اٹھا لیا, تو اب اگر وہی بجٹ رہے گا تو پھر اتنا سب کچھ کرنے کی ممتا بنرجی کو ضرورت کیا پڑی, یا کوئی بڑی تبدیلی آ سکتی ہے ریلوے بجٹ میں؟
دیکھیے شمیم پال صاحب, اس بات کو آپ سے आज कर चुके हैं, बता चुके हैं, और मैं उनसे बिल्कुल मुत्तफिक हूँ कि कोई रेलवे बजट में कोई बड़ी तब्दीली का की गुंजाइश ही नहीं, कोई इम्कान ही नहीं, और ना ही ममता बनर्जी को इसमें इसमें बड़ी दिलचस्पी है। ये एक एक सियासत का एक ड्रामाई अंदाज है जिसकी ममता बहुत पुरानी प्लेयर रह चुकी हैं, और वो बस ये छोटे मोटे किराए में तब्दीलियां आएंगी जो नए वजीर आए हैं रेलवे के, मसलन स्लीपर क्लास का किराया कुछ कम कर दिया जाएगा, थर्ड क्लास जिसको कहा जाता है हम इस्तेलाह में, वो उसका किराया कुछ कम कर दिया जाएगा, बाकी जो टैक्सेशन प्रपोजल्स फ्रेट जिस तरह से भाड़े में दाम बढ़े हैं या और दूसरी चीजें बढ़ी हैं उनमें कोई बड़ी तब्दीली नहीं आने वाली है। ममता बनर्जी को बंगाल के अवाम को सिर्फ ये दिखाना है कि उनकी वजह से गरीबों को मदद का बोझ कम हो गया, यानी वो मैं गरीबों की मसीहा हूँ, ये सियासत है। उसमें थोड़ी बहुत टिंकरिंग होगी, फिर उसके ऊपर बयानबाजी होगी, वाहवाही करवाई जाएगी पार्टी वालों से, और ये कोशिश की जाएगी कि अवाम भी ये समझें कि वाकई ममता गरीबों की मसीहा है। इसमें वो कामयाब होती है या नहीं कामयाब होती मैं ये नहीं बता सकता अभी, लेकिन सियासत यही है कि वो अवाम और गरीबों की मसीहा बनने की कोशिश कर रही हैं, उसमें वो कोई मौका अपने हाथ से जाने नहीं देना चाहती, चाहे वो रिटेल वाला मामला रहा हो जिसमें उन्होंने हंगामा आराई करके उस फैसले को रुकवा दिया था, या रेलवे बजट का वो हो, बुनियादी मसले से और मसाइल से ममता जी का लेना देना नहीं है।
जी बहुत शुक्रिया, मैं फिर आगे शमीम फैजी साहब, खुद वजीर खजाना प्रणब मुखर्जी साहब ने कहा है कि डीजल की कीमतें बढ़ सकती हैं और आइंदा दिनों में इस सिलसिले में दीगर सियासी जमातों से इत्तेफाक राय कायम करने की कोशिश की जाएगी, बाएं बाजू का क्या मौकिफ होगा?
देखिए, हम पेट्रोल और डीजल के मामले में हमेशा से एक बात कहते आए कि ये जो रोज ये सुनाया जाता है जी, कि जो ये कहा जाता है कि अंडर रिकवरी है, नुकसान हो रहा है, ये सरासर गलत है, इसलिए कि हम जिस दाम पर पेट्रोल खरीदते हैं और जिस दाम पर पेट्रोल की कंपनियां बेचती हैं इसमें बहुत बड़ा फर्क है। हम अपनी रिफाइनरी से निकले हुए तेल के दाम पर बेचने के बजाय उस पर तकरीबन 38% मरकजी और रियासती हुकूमतों का टैक्स होता है, इसलिए अगर पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं आलमी सतह पर तो उसका मुकाबला हुकूमत के टैक्स को कम करके किया जा सकता है, उससे अवाम पर बोझ थोपने की कोई कोशिश नहीं करनी चाहिए। मैं आपको याद दिला दूं कि यूपीए की जो नंबर एक सरकार थी उसकी बाएं बाजू की पार्टियां बाहर से हिमायत कर रही थी, जब ये मसला आया था तो हमने उनको बाकायदा आदाद व शुमार की बुनियाद पर यह बताया था कि आवाम से जो कीमत वसूल की जा रही है वो तेल की असल कीमत से इसलिए दुगनी है कि हुकूमत रियासती और मरकजी हुकूमत पेट्रोल और पेट्रोलियम मसनूआत पर जबरदस्त टैक्स लगाकर वसूल करती है, इससे हुकूमत को और पेट्रोल को घाटा नहीं होता है बल्कि ये टैक्स बढ़ाकर आवाम पर बोझ लाते हैं। अगर कीमतें बढ़ रही हैं आलमी मार्केट में, आप अपना टैक्स कम कर दीजिए, आवाम को पेट्रोल उसी दाम पर मिलेगा या इससे भी कम दाम पर दिया जा सकता है जिस पर इस वक्त बेचा जा रहा है। उसके अलावा हम पेट्रोल खरीदने के मामले में थोड़ी समझदारी का भी सबूत दें। ये कैसे हो सकता है कि 2 वर्ष पहले तक जो ईरान हमारी जुमला पेट्रोलियम मसनूआत की 12% ज़रूरत को पूरा करता था, पिछले 2 सालों में लगातार हमने उससे तेल खरीदना बंद कर दिया, उससे पेट्रोल खरीदना बंद कर दिया और दूसरी तरफ जा रहे हैं जहां पेट्रोल के दाम सट्टेबाजी के जरिए बढ़ाए और घटाए जाते हैं।
जी बहुत शुक्रिया, मैं फिर हाजिर हूँ। जफर आगा साहब, प्रणब मुखर्जी साहब ने कहा है कि मुमकिन है कि महंगाई में इजाफा हो लेकिन आइंदा चंद महीने में उतार चढ़ाव आएगा, फिर अफरात जर की शरह पर काबू पा लिया जाएगा, क्या कहते हैं मुबसरीन इस सिलसिले में?
ये तो बहुत ही अंडर स्टेटमेंट है कि मुमकिन है कि इजाफा हो। इजाफा शुरू हो चुका है, कीमतों के दाम बढ़ने शुरू हो चुके हैं और आगे कम से कम 6 महीने बहुत सख्त कीमतों का बोझ आवाम के ऊपर पड़ने वाला है। भाड़ा बढ़ा है, टैक्सेस बढ़े हैं, सर्विस टैक्स 2% 10% से बढ़ाकर 12% कर दिया गया। जो सामान आप खरीदें उसके ऊपर सिर्फ सर्विस टैक्स के ही एतबार से हर चीज में 2% का इजाफा हो जाएगा। फिर फ्रेट का जो इजाफा होता है वो होगा। फिर जैसा शमीम साहब फरमा रहे थे, चूंकि पेट्रोल की प्राइसेस हमारे यहाँ रोलिंग प्राइसेस कर दी हैं, जब चाहे बढ़े जब चाहे घटे, चुनांचे आलमी घटना तो घटती तो है नहीं, बढ़ती रहती है। दूसरे टैक्सेस बढ़े हैं तो इन सब एक्साइज बढ़ी है, ये 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 इन सब चीजों का बोझ आवाम के ऊपर ही आने वाला है और इसका सबसे बड़ा असर प्राइसेस पे ही होगा और प्राइसेस बहुत सख्त तरीके से बढ़ने जा रही है। इसको और जाहिर सी बात है कि प्राइसेस बढ़ने के माने इन्फ्लेशन बढ़ेगा। तो अब प्रणब मुखर्जी के पास क्या फॉर्मूला है इसको कंट्रोल करने का, कैसे वो कंट्रोल करेंगे इसका उन्होंने कोई जिक्र नहीं किया है। अब देखिए क्या 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 कर पाते हैं वजीर खजाना, लेकिन ये तय है कि आने वाले 6-8 महीनों में, कम से कम 6 महीनों में जबरदस्त महंगाई की मार हिंदुस्तानी आवाम पर होने जा रही।
जी बहुत शुक्रिया जबर आगा साहब, आपने अपना कीमती वक्त हमें इनायत किया। शमीम फैजी साहब, बजट पेश हो चुका है पार्लियामेंट में, क्या तवक्को है पार्लियामेंट के माहौल के बारे में, क्या कैसी बहस होगी आपके ख्याल में?
बहस तो हो जाएगी, सब अपनी अपनी बात कह लेंगे, लेकिन जैसा कल राज्यसभा में हुआ कि आखिर में बाहर से सपोर्ट करने वालों को भी धमकी के जरिए या किसी और जरिए से अपने हक में खड़ा किया जा सकता है, तो ये हुकूमत ये बजट पास करवाने की कोशिश करेगी। उसके लिए चाहे समाजवादी पार्टी को इकट्ठा करना पड़े, बहुजन समाज पार्टी की मदद लेनी पड़े, वो सब करेंगे और वो बेचारे मजबूर हैं क्योंकि उनके ऊपर भी CBI के केसेस चल रहे हैं।
जी आखिरी सवाल आपसे कहना चाहूँगा शमीम फैजी साहब, क्या ये बजट मामला आइंदा की जो सियासी तरकीब है पार्टियों की आइंदा इलेक्शन में उसको भी तायुन करेगी?
किसी हद तक, इसलिए कि अब ये सवाल हमारे मुल्क में मरकजी सवाल बनता जा रहा है कि 1990 की दहाई से माशी इस्लाहात का जो अमल हमने शुरू किया उससे मुल्क की तरक्की हुई है या मुल्क बोहरान की तरफ गया है। हकीकत यह है कि मुल्क इस वक्त शदीद माशी बोहरान से दो चार है और जो सियासी पार्टियां आवाम को इस माशी बोहरान से निकालने की हमनवा होंगी उन्हें इन पॉलिसियों का मुतबादिल पेश करना होगा। अब बहुत ज़्यादा दिनों तक जात पात धर्म इलाका जबान इन मसलों पर वोट हासिल करना मुश्किल हो जाएगा, इसलिए कि आवाम जब माशी बोझ के तले दबे हों तो वो चाहेंगे कि सिर्फ किसी माशी पॉलिसी का मुर्दाबाद नहीं बल्कि उसके मुतबादिल पॉलिसी का जिंदाबाद भी हो।
बहुत बहुत शुक्रिया आपका शमीम फैजी साहब, जफर आगा साहब आपका भी शुक्रिया और वसीम अहमद साहब भी हमारे साथ थे, अगरचे उनसे कम गुफ्तगू हो सकी लाइन टेलीफोन लाइन की खराबी की वजह से, बहरहाल उनके भी हम शुक्रगुजार हैं। सबसे ज्यादा अपने मौजूद नाज़रीन के उन्होंने हमारे मेहमानों की गुफ्तगू सुनी। फैसला आपके हवाले करते हैं। नाज़रीन हिंदुस्तान का बजट पेश किया गया है और इस सिलसिले में मुख्तलिफ आरा आपने मुलाहजा की। अगले प्रोग्राम तक के लिए मुझे लिबास दीजिए, दीगर साथियों को इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज़।